एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, पर जिसे समझना कई बार मतलब मुश्किल हो जाता है। आधुनिक युद्ध।
बिल्कुल, और हम रोज ही खबरें देखते सुनते हैं, कभी ड्रोन हमले, कभी साइबर वॉरफेयर, कभी वो लंबी चलने वाली लड़ाइयाँ।
लेकिन क्या हम सच में ये समझ पाते हैं कि आज के जमाने का युद्ध पहले से कितना अलग है और किन मायनों में शायद आज भी वैसा ही है?
हाँ, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम रिचर्ड इंग्लिश के विश्लेषण पर ध्यान देंगे,
खासकर उनकी किताब मॉडर्न वॉर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के आधार पर। ये इस विषय को समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, कह सकते हैं।
हाँ, और रिचर्ड इंग्लिश कोई मतलब सड़क चलते टिप्पणीकार नहीं है, वो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में राजनीति के प्रोफेसर हैं, ब्रिटिश एकेडमी के फेलो हैं, और राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और आधुनिक संघर्षों पर दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों में से एक हैं।
और उनकी एक खास बात है जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ सैन्य इतिहासकार नहीं है,
अच्छा,
वो राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं। तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि लड़ाई कैसे लड़ी गई, बल्कि ये भी समझते हैं कि उसके पीछे राजनीतिक कारण क्या थे, ऐतिहासिक जड़ें क्या थीं। यू नो, उनकी पिछली किताबें भी हैं, जैसे आयरे पर आर्म्ड स्ट्रगल या टेररिज्म हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये दिखाती हैं कि वो ज़मीनी हकीकत को, खासकर जो नॉन स्टेट ग्रुप्स होते हैं, उनकी हिंसा और उनके लक्ष्यों को कितनी बारीकी से समझते हैं।
सही,
ये समझना कि कौन क्यों लड़ रहा है, उनका असल मकसद क्या है, मतलब गोल क्या है, ये उनके विश्लेषण का एक तरह से केंद्र है।
तो आज हमारा उद्देश्य क्या है? इस किताब और इंग्लिश के व्यापक विचारों के जरिए ये समझना कि आधुनिक युद्ध सिर्फ नई तकनीक या फौजी रणनीतियों का खेल क्यों नहीं है।
हाँ,
वी किताब जैसा नाम से ही पता चलता है, उन सब के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है जो हेडलाइन से आगे जाकर इस मुश्किल विषय की तह तक जाना चाहते हैं।
सही कहा। इंग्लिश का जो मूल तर्क है, जो फंडा है, वो यही है कि आधुनिक युद्ध असल में राजनीति का ही विस्तार है।
क्लॉज़विट्स वाली बात।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फौज का काम नहीं है, ये समाज से, संस्कृति से, अर्थव्यवस्था से और यहाँ तक कि इंसानी जज्बातों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
तो इसे सिर्फ संगठित हिंसा की तरह नहीं देख सकते?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे एक पूरी तस्वीर के रूप में देखना होगा। युद्ध के कारण क्या हैं, लड़ा कैसे जाता है, इंसानों पर इसका क्या असर होता है और इसका अंत अक्सर इतना धुंधला और जटिल क्यों होता है? और हर पहलू में ये सवाल अहम है कि जो पक्ष शामिल हैं, उनका असली मकसद, उनका गोल क्या है, और इस मकसद को हासिल करने में युद्ध की भूमिका यानी रोल क्या है?
ठीक है, तो चलिए इस जटिल विषय की परतें खोलते हैं। रिचर्ड इंग्लिश के नज़रिए से देखते हैं कि आधुनिक युद्ध की शक्ल क्या है और इसे पूरी समग्रता में कैसे समझा जा सकता है।
चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश हमें युद्ध के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क देते हैं जो सिर्फ हथियारों और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है, वो उसके राजनीतिक और मानवीय आयामों पर ज्यादा जोर देते हैं।
तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि इंग्लिश आधुनिक युद्ध कहते किसे हैं, मतलब कब से शुरू हुआ ये?
उनके हिसाब से इसकी शुरुआत मोटे तौर पर फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों से होती है।
अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि यहीं से युद्ध राष्ट्रवाद, विचारधारा और पूरी आबादी को संगठित करने जैसी चीजों से जुड़ गया। अब युद्ध सिर्फ राजाओं या पेशेवर सेनाओं का काम नहीं रहा।
मतलब जनता भी शामिल हो गई।
हाँ बिल्कुल, यहीं से वो टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध का कॉन्सेप्ट आया, जहां युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है।
और यहीं पर वो क्लॉज़विट्स वाली बात आती है ना?
बिल्कुल, 19वीं सदी के प्रशियाई विचारक कार्ल वॉन क्लॉज़विट्स का वो अमर सिद्धांत, युद्ध राजनीति का ही दूसरे साधनों से जारी रहना है। ये एक लाइन आप कह सकती हैं पूरी किताब की कुंजी है।
हाँ, ये विचार तो बार बार सामने आता है उनके काम में। इसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध कोई अंधी हिंसा नहीं है?
सही, ये संगठित हिंसा है, उद्देश्यपूर्ण हिंसा है और इसका अंतिम लक्ष्य हमेशा राजनीतिक होता है। चाहे वो किसी इलाके पर कब्जा करना हो या किसी सरकार को उखाड़ फेंकना हो या अपनी विचारधारा फैलानी हो, मकसद हमेशा पॉलिटिकल ही रहता है। और इंग्लिश चेतावनी देते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो देश करते हैं वो यही है कि युद्ध को सिर्फ एक सैन्य समस्या समझ लेते हैं और उसके पीछे के राजनीतिक लक्ष्य को भूल जाते हैं।
तो ये तो हुआ कि युद्ध क्या है, पर ये होते क्यों हैं, मतलब कारण क्या है?
देखिए, इंग्लिश कोई एक सीधा जवाब नहीं देते, वो कई स्तरों पर कारणों को देखते हैं।
अच्छा,
जैसे पहला स्तर है व्यक्ति का, क्या इंसान स्वभाव से ही आक्रामक है, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, उनका डर या इज्जत की भावना, ये सब कैसे युद्ध भड़का सकती हैं।
फिर दूसरा स्तर?
दूसरा स्तर है राज्य का, क्या तानाशाही सरकारें लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा युद्ध छेड़ती हैं, राष्ट्रवाद कैसे भूमिका निभाता है, संसाधनों पर कब्जे की आर्थिक लड़ाई या देश के अंदर की अस्थिरता।
तो मतलब देश के अंदर की प्रॉब्लम भी बाहर युद्ध का कारण बन सकती है।
बिल्कुल, यहाँ युद्ध अक्सर सरकारों के लिए अपने आंतरिक या बाहरी लक्ष्य साधने का एक जरिया बन जाता है, ये उनके लिए एक खास भूमिका निभाता है कह सकते हैं।
और तीसरा स्तर?
वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, मतलब दुनिया में कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं जो नियम लागू कर सके।
हाँ, अराजकता जिसे कहते हैं।
सही, तो ऐसे में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होता है, इससे असुरक्षा पैदा होती है, हथियारों की होड़ लगती है, शक्ति संतुलन बनाने की कोशिशें होती हैं,
और ये सब अक्सर संघर्ष में बदल जाता है।
बिल्कुल, इंग्लिश कहते हैं कि ज्यादातर युद्ध इन तीनों स्तरों के फैक्टर्स के खतरनाक मेल से ही शुरू होते हैं, वजह चाहे जो भी हो उसके पीछे एक राजनीतिक लक्ष्य जरूर छिपा होता है।
ठीक है, तो ये तो हुई कारणों की बात, अब देखते हैं कि ये युद्ध लड़े कैसे जाते हैं। यहाँ मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है।
हाँ है, बिल्कुल, इंग्लिश इसी को सामने लाते हैं। एक तरफ तो हमारे पास एकदम भविष्य जैसी लगने वाली तकनीक है।
हाँ, वो RMA, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स।
सही, जिसमें वो पिन पॉइंट सटीक मिसाइलें, सैटेलाइट से निगरानी, लड़ाकू ड्रोन, साइबर हमले, ये सब शामिल है।
इनसे ऐसा लग सकता है कि शायद युद्ध अब ज्यादा क्लीन हो गए होंगे, कम खूनी।
हाँ, ये भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश जोर देकर कहते हैं कि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, और शायद कम महत्वपूर्ण पहलू।
अच्छा,
क्यों?
क्यों?
क्योंकि आज के जमाने का जो सबसे आम युद्ध रूप है वो हाईटेक देशों के बीच सीधी टक्कर नहीं है, वो है असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर।
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है एक तकनीकी रूप से बहुत शक्तिशाली देश या गठबंधन का सामना किसी कमजोर, अक्सर गैर सरकारी समूह से होता है, जैसे विद्रोही, गुरेला लड़ाके या आतंकवादी संगठन,
जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक।
बिल्कुल वही, और इन लड़ाइयों में जो कमजोर पक्ष होता है वो अक्सर कम तकनीक वाले लेकिन बेहद कारगर तरीके अपनाता है।
जैसे?
जैसे IED, मतलब देसी बम, आत्मघाती हमले, सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा फैलाना, और सबसे महत्वपूर्ण, आम आबादी के बीच घुल मिल जाना।
तो यहाँ पर भूमिकाएं, रोल्स बदल जाती हैं।
हाँ, तकनीकी रूप से ताकतवर सेना पारंपरिक लड़ाई के लिए तैयार होती है, लेकिन दुश्मन अलग नियमों से खेल रहा होता है। इंग्लिश साफ करते हैं कि सिर्फ तकनीक जीत की गारंटी नहीं है।
तो फिर क्या है?
लड़ने वालों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी रणनीति और स्थानीय लोगों का समर्थन, ये ज्यादा मायने रखता है, खासकर जब उनके लक्ष्य जैसे आजादी या सत्ता परिवर्तन उनके लिए अस्तित्व का सवाल हो।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि अरबों डॉलर की तकनीक भी कभी कभी देसी बमों और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बेअसर क्यों हो जाती है। अब युद्ध के सबसे शायद मार्मिक पहलू पर आते हैं, मानवीय अनुभव। इंग्लिश हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध को सच में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये इंसानों पर क्या कहर भर पाता है।
हाँ, और उन्होंने इसे दो नजरियों से देखा है।
पहला, लड़ने वाले यानी सैनिक का नजरिया।
उसमें क्या खास है?
उसमें देखिए, युद्ध के मैदान में बनने वाली वो गहरी दोस्ती और भाईचारा तो है, लेकिन साथ ही भयानक डर भी है, किसी की जान लेने का नैतिक बोझ है, और वो लंबे समय तक पीछा न छोड़ने वाला मानसिक आघात भी है।
PTSD जिसे कहते हैं।
हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सैनिक सिर्फ वर्दी पहने मशीनें नहीं होते, वो इंसान होते हैं जो भयानक तनाव और नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं।
और दूसरा नजरिया?
दूसरा और शायद आज के युद्धों में ज्यादा महत्वपूर्ण नजरिया है आम नागरिक का।
हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। निक, युद्ध में नागरिक सिर्फ कोलैटरल डैमेज यानी अनजाने में हुआ नुकसान नहीं होते, अक्सर उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जाता है।
मतलब वो पारंपरिक रेखा के सैनिक सैनिक से लड़ेगा, वो धुंधली हो गई है।
खतरनाक रूप से धुंधली हो गई है। रणनीतिक बमबारी, शहरों की घेराबंदी, नस्लीय सफाई, बड़े पैमाने पर विस्थापन, सामाजिक ताने बाने का टूटना, ये सब आम नागरिकों को झेलना पड़ता है। उनकी भूमिका सिर्फ दर्शक या पीड़ित की नहीं रह जाती।
लेकिन क्या वो सिर्फ पीड़ित ही होते हैं?
नहीं, इंग्लिश उनके लचीलेपन, उनके प्रतिरोध और उनकी भूमिका को भी उजागर करते हैं। लोग सिर्फ असहाय पीड़ित नहीं होते, वो मुश्किल हालात में जीने के तरीके ढूंढते हैं, विरोध करते हैं और कभी कभी संघर्ष की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। उनका अनुभव युद्ध की जमीनी हकीकत का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं युद्ध के अंत पर। ये एक ऐसा पहलू है जिसे शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, और इंग्लिश का तर्क है कि आधुनिक युद्ध में जीत को परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया है।
मतलब वो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा नहीं होता कि एक पक्ष ने पूरी तरह हार मान ली।
वो अब अपवाद है, नियम नहीं। ज्यादातर आधुनिक संघर्ष किसी निर्णायक सैन्य जीत में खत्म नहीं होते।
तो फिर कैसे खत्म होते हैं?
वो या तो सालों चलते रहते हैं, या किसी ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, या फिर लंबी और जटिल राजनीतिक बातचीत से कोई आधा अधूरा समझौता होता है, या फिर एक पक्ष थकावट और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण पीछे हट जाता है।
तो यहाँ फिर वही बात आ गई, राजनीतिक लक्ष्य।
बिल्कुल, युद्ध खत्म करने का मतलब सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ राजनीतिक समझौता करना है जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करे, यानी असली राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना। यही वजह है कि जैसे 2003 में इराक पर हमले जैसी सैन्य जीत भी स्थायी शांति लाने में क्यों विफल रही, क्योंकि उसके बाद कोई स्पष्ट और हासिल करने लायक राजनीतिक लक्ष्य और रणनीति नहीं थी।
और अंत में इंग्लिश भविष्य की ओर भी देखते हैं, क्या युद्ध का कोई भविष्य है?
हाँ, वो लॉन्ग पीस यानी लंबे अमन के तर्क पर विचार करते हैं कि 1945 के बाद से बड़ी शक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध दुर्लभ क्यों हो गए हैं?
उसके क्या कारण हो सकते हैं?
हो सकता है परमाणु हथियारों का डर हो, या बढ़ती हुई आर्थिक निर्भरता, या फिर शायद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार।
लेकिन क्या वो पूरी तरह आशावादी हैं?
नहीं, वो हमें ज्यादा आशावादी होने से आगाह भी करते हैं। भले ही बड़े युद्ध कम हुए हों, लेकिन राजनीतिक हिंसा के दूसरे रूप जैसे गृह युद्ध, विद्रोह, आतंकवाद, वो बने हुए हैं या शायद बढ़े भी हैं।
और भविष्य के लिए क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं?
कुछ रुझान साफ दिख रहे हैं। साइबर युद्ध का एक नए मोर्चे के रूप में उभरना।
हाँ, वो तो है।
जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर बढ़ता दबाव और उससे होने वाले संघर्ष, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और स्वचालित हथियारों जैसी नई तकनीकों की भूमिका, ये सब युद्ध के मैदान और लड़ाकों की भूमिका को और बदल सकते हैं।
तो उनका अंतिम मूल्यांकन क्या है?
संयत और यथार्थवादी है। वो कहते हैं कि युद्ध किसी न किसी रूप में शायद इंसानी समाज का हिस्सा बना रहेगा, और इसकी जटिल प्रकृति, इसके पीछे के लक्ष्यों और इसमें शामिल किरदारों की बदलती भूमिकाओं को समझना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, रिचर्ड इंग्लिश के विश्लेषण से जो सबसे जरूरी सबक निकलते हैं वो क्या होंगे?
हाँ, कुछ बातें बिल्कुल साफ है। पहली और सबसे अहम जो हमने बार बार दोहराई, युद्ध सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक कार्य है।
क्लॉजमेट्स वाला पॉइंट।
हाँ, सैन्य जीत तब तक बेमानी है जब तक वो चाहा गया राजनीतिक लक्ष्य हासिल न कर ले।
दूसरा सबक
वो है आधुनिकता का विरोधाभास। एक तरफ हजारों मील दूर से ड्रोन और साइबर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाई साधारण राइफलों, चाकुओं और कार बॉम्बों से लड़ी और जीती या हारी जा रही है।
ये याद दिलाता है कि तकनीक सिर्फ एक टूल है।
बिल्कुल, कोई जादुई समाधान नहीं। इंसानी इच्छा शक्ति, विचारधारा और रणनीति आज भी सबसे ऊपर है। तकनीक की भूमिका अहम है पर निर्णायक नहीं।
तीसरा क्या कहेंगे?
तीसरा, वो धुंधली होती रेखाएं सैनिक और नागरिक के बीच, युद्ध और शांति के बीच, जैसे वो अघोषित संघर्ष, ग्रे जोन ऑपरेशंस।
हाँ।
और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बीच भी, युद्ध अब शहरों की गलियों, इंटरनेट और वैश्विक मीडिया तक फैल चुका है। इसने सभी किरदारों की भूमिकाओं को जटिल बना दिया है, चाहे वो सरकारें हो, विद्रोही समूह हो या आम नागरिक।
और चौथा मेरे ख्याल से मानवीय अनुभव की केंद्रीयता है।
बिल्कुल, इंग्लिश हमें लगातार अमूर्त रणनीतियों और आंकड़ों से हटाकर युद्ध की भयानक सच्चाई की ओर खींचते हैं। सैनिकों का डर और आघात, नागरिकों की पीड़ा और विस्थापन,
और इन अनुभवों को समझे बिना युद्ध की असली कीमत और उसके लक्ष्यों के मानवीय परिणामों को समझना नामुमकिन है।
हाँ, ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या तर्क हैं जो खास तौर पर दिमाग में रह जाते हैं?
है, बिल्कुल। जैसे उनका ये कहना कि सैन्य कार्रवाई को हमेशा राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर ये उससे अलग हो जाती है तो चाहे मैदान में कितनी भी कामयाबी मिले, अंत में विफलता निश्चित है।
ये सीधा क्लॉजविट्स से आता है और इराक या अफगानिस्तान जैसे हालिया उदाहरणों को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल, सैन्य जीत हुई पर राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हुए।
और कोई
एक और शक्तिशाली विचार ये है कि युद्ध का भविष्य सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों और एआई का नहीं है, ये उतना ही देसी बमों, चाकुओं की लगातार कम तकनीकी क्रूरता और लोगों को किसी मकसद के लिए मरने मारने को प्रेरित करने वाली विचारधारा की ताकत के बारे में है।
ये हमें तकनीक के मोह से बाहर निकालकर युद्ध के ज्यादा जमीनी और अक्सर ज्यादा गंदे पहलू को देखने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये दिखाता है कि हिंसा की भूमिका कितनी अलग अलग हो सकती है। युद्ध सबसे बढ़कर पीड़ा का एक गहरा मानवीय अनुभव है।
ये याद दिलाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक लक्ष्यों के पीछे इंसानी कीमत क्या होती है।
सही,
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहले तो एक ज्यादा जागरूक और सूचित नागरिक बनने में।
कैसे?
जब भी हम दुनिया में कहीं किसी संघर्ष के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो ये विश्लेषण हमें गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ ये पूछने के बजाय कि कौन जीत रहा है, हम पूछ सकते हैं दोनों पक्षों के असली राजनीतिक लक्ष्य क्या हैं?
क्या नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है?
यहाँ एक स्थिर अंत का मतलब भी क्या है, इस तरह के सवाल।
हाँ, ये आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है।
बिल्कुल, हम वो आसान राष्ट्रवादी नारों पर सवाल उठाना सीखते हैं। हम समझने लगते हैं कि कोई नई तकनीक युद्ध जिता देगी या सिर्फ बमबारी से गहरी राजनीतिक समस्या हल हो जाएगी, ऐसे दावों पर शक करना क्यों जरूरी है। हम फौरी सैन्य उद्देश्यों और लंबे समय के राजनीतिक लक्ष्यों के बीच अंतर करना सीखते हैं। इससे हम मीडिया और सरकारों से मिलने वाली जानकारी को ज्यादा बारीकी से परख सकते हैं।
और क्या इसका कोई पेशेवर इस्तेमाल भी है?
हाँ बिल्कुल है, जो लोग नीति निर्माण में हैं, सेना में हैं, कूटनीति में हैं या मानवीय सहायता के काम में लगे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ये एकीकृत रणनीतियों की जरूरत पर जोर देता है जो सैन्य, राजनयिक, आर्थिक और सूचनात्मक प्रयासों को जोड़ती हैं। यह सैन्य नेताओं को याद दिलाता है कि उनका मुख्य मकसद राजनीतिक लक्ष्यों की सेवा करना है, और स्थानीय संस्कृति और राजनीति की समझ उतनी ही जरूरी है जितनी सामरिक महारत।
और शायद एक व्यापक नजरिया भी मिलता है।
हाँ बिल्कुल, एक व्यापक ऐतिहासिक और वैश्विक नजरिया विकसित करने में मदद करता है। विद्रोहों के पैटर्न, गृह युद्धों को खत्म करने की चुनौतियों और राजनीतिक शिकायतों की स्थायी प्रकृति को समझना हमें नए संकटों पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने से रोकता है।
सही,
ये हमें याद दिलाता है कि ये जटिल समस्याएं हैं जिनका कोई आसान समाधान नहीं होता, और युद्ध के मानवीय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करके ये संघर्ष के सभी पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है, चाहे उनके पक्ष का राजनीतिक लक्ष्य कुछ भी हो।
तो आज रिचर्ड इंग्लिश के विश्लेषण से हमने आधुनिक युद्ध की कई परतें समझी। मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही वो ये कि कैसे तकनीक के आसमान छूने के बावजूद युद्ध का मानवीय पहलू और उसके पीछे का राजनीतिक लक्ष्य आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। सैन्य शक्ति का इस्तेमाल बिना स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के अक्सर निरर्थक या विनाशकारी साबित होता है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि कैसे युद्ध और शांति, सैनिक और नागरिक के बीच की वो रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं।
हाँ।
इंग्लिश हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता, वो विचारों में, सूचनाओं में, साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है, और इससे किरदारों की भूमिकाएं और संघर्ष के लक्ष्य इतने बहुआयामी हो गए हैं के जीत या हार जैसे शब्द भी कई बार पुराने लगने लगते हैं।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, खासकर जब तकनीक, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक राजनीति लगातार बदल रही है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।